ये कल्पना करना वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब जरा सोचिए, अगर आज अचानक दुनिया के सारे सर्वर्स, सारा इंटरनेट क्रैश हो जाए।
बिल्कुल, मतलब एक झटके में सब गायब।
हाँ, और हमारी सारी डिजिटल फाइलें हमेशा के लिए मिट जाएं, तो मानव समाज का क्या होगा? आज की स्थिति तो यह है कि हम में से अधिकांश लोग अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों के फोन नंबर तक याद नहीं रख पाते।
सही बात है, हम तो पूरी तरह से स्क्रीन पर टिके हुए हैं,
है ना? हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा ज्ञान और समाज का सारा ऐतिहासिक डेटा अब हमारी जेब में रखे उस छोटे से डिवाइस में है, या फिर किसी अदृश्य क्लाउड में कैद है।
ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, आधुनिक समाज पूरी तरह से एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पर निर्भर हो चुका है।
हाँ, हमारी खुद की मेमोरी तो जैसे काम ही नहीं करती।
बिल्कुल, हमारी मानसिकता कुछ ऐसी बन गई है कि अगर कोई चीज लिखित रूप में नहीं है या किसी डिजिटल सर्वर पर सेव नहीं है, तो हमें लगता है कि उसका कोई वजूद ही नहीं है।
सही कहा।
मतलब हम कागज और स्क्रीन के बिना किसी भी जानकारी की प्रामाणिकता पर भरोसा ही नहीं कर पाते।
और यहीं से आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत होती है। तो आज हम डॉक्टर क्रेग किनर के गहन शोध और उनके व्याख्यानों के आधार पर एक बहुत गहरे विश्लेषण में उतरने वाले हैं।
हाँ, ये विषय वाकई बहुत रोमांचक है।
बिल्कुल, हम पहली सदी की एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किताब बुक ऑफ एक्ट्स और इसके लेखक ल्यूक के इतिहास लिखने की कला को समझने वाले हैं, जिसे तकनीकी भाषा में हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है।
हाँ, उसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता की पड़ताल करना बहुत जरूरी है।
हमारा लक्ष्य सिर्फ एक प्राचीन किताब का विश्लेषण करना नहीं है, मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि आज से 2000 साल पहले, जब कोई वॉइस रिकॉर्डर नहीं था, कोई कैमरा या इंटरनेट नहीं था, तब लोग इतिहास को कैसे सहेजते थे।
और ये सिर्फ एक धार्मिक इतिहास की बात नहीं है।
एकदम सही, ये इंसानी दिमाग की उस अद्भुत क्षमता की कहानी है जिसे आज हम शायद कहीं पीछे छोड़ आए हैं।
देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने इस आधुनिक डिजिटल चश्मे को उतारना होगा।
मतलब हमें उस जमाने की सोच को अपनाना होगा।
बिल्कुल, हम 21वीं सदी के नजरिए से पहली सदी की दुनिया का मूल्यांकन नहीं कर सकते। प्राचीन दुनिया को समझने के लिए हमें उस दौर के सामाजिक और बौद्धिक ढांचे को समझना होगा,
जहाँ याददाश्त यानी मेमोरी ही सब कुछ थी।
हाँ, याददाश्त और पीढ़ियों तक चलने वाली मौखिक परंपराएं ही सूचना के आदान प्रदान का सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करती थी।
तो चलिए इसी बुनियादी सवाल को उठाते हैं। आज हम कोई बात सुनते हैं तो दो दिन बाद उसका आधा हिस्सा भूल जाते हैं।
ये तो हम सबके साथ होता है।
हाँ ना, ऐसे में इंटरनेट और किताबों के बिना कोई भी जटिल जानकारी या ऐतिहासिक घटना दशकों या सदियों तक बिना किसी मिलावट के सुरक्षित कैसे रह सकती है? ये थोड़ा अविश्वसनीय लगता है।
आधुनिक दृष्टिकोण से यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा जवाब प्राचीन काल की उस सुपर पावर में छिपा है जिसे हम आज बहुत मामूली समझते हैं।
आप इंसानी याददाश्त की बात कर रहे हैं?
बिल्कुल, इंसानी याददाश्त। प्राचीन काल में याददाश्त को सिर्फ एक प्राकृतिक खूबी नहीं माना जाता था, बल्कि वो एक बेहद जरूरी कौशल था। एक कठोर अनुशासन और एक कला के रूप में उसे विकसित किया गया था।
अच्छा।
हाँ, प्राचीन यूनान के अनपढ़ कहानीकारों का ही उदाहरण ले लीजिए, जिन्हें बार्ड्स कहा जाता था। वे इलियड और ओडिसी जैसे विशाल महाकाव्यों को बिना देखे पूरी तरह से जुबानी सुना सकते थे।
अरे वाह।
और ये कोई छोटी मोटी कविताएं नहीं थी। प्राचीन मानकों के हिसाब से इनमें कुल मिलाकर 48 किताबें शामिल थीं।
48 किताबें? ये तो किसी भी इंसान के लिए एक सुपर कंप्यूटर जैसी क्षमता हो गई।
बिल्कुल।
लेकिन मतलब ये संभव कैसे था? क्या वे जन्म से ही ऐसी असाधारण स्मरण शक्ति के साथ पैदा होते थे?
नहीं, ये जन्मजात चमत्कार से ज्यादा एक विकसित की गई तकनीक थी। मतलब वे एक विशेष लय, मीटर और कुछ स्मृति सहायक तकनीकों का उपयोग करते थे, जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं।
अच्छा, तो वो चीजों को जोड़कर याद करते थे।
हाँ, कहानी के हर हिस्से को एक मानसिक चित्र के साथ जोड़कर याद किया जाता था। और सिर्फ अनपढ़ कहानीकार ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे रोमन अभिजात वर्ग में भी ये क्षमता कमाल की थी।
इसका कोई लिखित प्रमाण है क्या?
बिल्कुल है। सेनेका द एल्डर का ऐतिहासिक विवरण इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। सेनेका ने खुद लिखा है कि जवानी के दिनों में उनमें इतनी क्षमता थी कि वो एक ही बार में 2000 नाम सुनकर उन्हें बिल्कुल उसी सटीक क्रम में दोहरा सकते थे।
2000 नाम एक ही बार में?
हाँ, इतना ही नहीं, अगर उन्हें 200 पंक्तियों की कोई नई कविता सुनाई जाती तो वे उसे उल्टे क्रम में सुना सकते थे।
उल्टे क्रम में? हाँ? मतलब अंतिम पंक्ति से शुरू करके पहली पंक्ति तक?
बिल्कुल वही।
ये वाकई हैरान करने वाला है, 2000 नाम उसी क्रम में याद रखना, वो भी बिना कहीं लिखे।
उस जमाने में ये बहुत आम बात थी।
लेकिन देखिए, ये तो 2000 साल पुरानी बात हो गई। अक्सर ऐतिहासिक दावों में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलने की गुंजाइश रहती है ना?
लोग ऐसा सोच सकते हैं।
तो क्या हमारे पास आधुनिक युग में ऐसी मौखिक परंपराओं या असीमित याददाश्त का कोई प्रमाणित उदाहरण है?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है और डॉक्टर कीनर ने अपने शोध में इस शंका का भी समाधान किया है।
अच्छा, उन्होंने क्या बताया?
वे एक बहुत ही दिलचस्प आधुनिक उदाहरण साझा करते हैं। उनकी एक 96 वर्षीय पड़ोसी हुआ करती थी जिनका नाम एना गुलिक था।
96 वर्ष?
हाँ, एना उस दौर में बड़ी हुई थी जब समाज पूरी तरह से रेडियो, टीवी या इंटरनेट की गिरफ्त में नहीं था। एना ने डॉक्टर कीनर को अपने परिवार की 1700 के दशक की कहानियां बिल्कुल सटीक तारीखों और घटनाओं के साथ सुनाई।
18वीं सदी की बातें इतनी सटीकता से?
बिल्कुल। और जब डॉक्टर कीनर ने एक इतिहासकार के तौर पर उन कहानियों को पुराने पब्लिक और चर्च रिकॉर्ड से क्रॉस चेक किया तो वे हैरान रह गए।
क्या वो सब सच था?
एना की बताई गई जानकारी 100% सटीक थी। ये सारा ज्ञान महज पीढ़ियों से मौखिक रूप से आगे बढ़ रहा था।
ये तो अद्भुत है।
और सिर्फ यही नहीं, अगर हम अफ्रीकी महाद्वीप की बात करें तो वहां ग्रियोट परंपरा में पीढ़ियों तक पूरे कबीलाई इतिहास, वंशावली और युद्धों के विवरण को इसी मौखिक परंपरा के जरिए बिना किसी बदलाव के सहेजा गया है।
यहां एक तर्क सामने आता है। हम सबने बचपन में चाइनीज विस्पर्स या टेलीफोन नाम का खेल खेला है ना?
हाँ बिल्कुल खेला है।
जिसमें एक इंसान दूसरे के कान में कोई बात फुसफुसाता है और जब तक वो बात 10वें इंसान तक पहुंचती है उसका पूरा मतलब ही बदल चुका होता है।
हाँ, वो तो मजाक बन जाता है।
तो क्या मौखिक इतिहास के साथ भी ऐसा नहीं होता? मतलब जब कोई कहानी दशकों तक एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है तो क्या वो एक अफवाह या मिथक में नहीं बदल जाती?
ये तुलना अक्सर की जाती है लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बुनियादी खामी है।
वो क्या?
देखिए, चाइनीज विस्पर्स का खेल जानबूझकर जानकारी को बिगाड़ने के लिए डिजाइन किया गया और वो कोई आम बातचीत होती है।
हाँ, उसका तो मकसद ही हंसना होता है।
बिल्कुल, लेकिन प्राचीन काल में ऐतिहासिक या धार्मिक मौखिक परंपरा कोई गपशप नहीं थी।
हाँ,
ये एक बेहद अनुशासित, संस्थागत और तकनीकी प्रक्रिया थी।
मतलब इसके लिए बाकायदा नियम थे?
हाँ, डॉक्टर कीनर बताते हैं कि इसके लिए ग्रीक भाषा में बाकायदा एक तकनीकी शब्द इस्तेमाल होता था, पैराडिडोमी।
हाँ,
जिसका मतलब था किसी बहुमूल्य धरोहर को बहुत ही सावधानी से सौंपना।
पैराडिडोमी तो इसमें होता क्या था?
जब एक गुरु अपने शिष्यों को कोई जानकारी देता था तो ये शिष्यों का परम कर्तव्य होता था कि वो उसे बिना किसी बदलाव, बिना किसी मिलावट के आगे बढ़ाएं।
और अगर कोई गलती कर दे तो?
इस प्रक्रिया में समुदाय के लगातार निगरानी होती थी। अगर कोई कहानी सुनाते हुए एक शब्द भी गलत बोलता तो वहां बैठे बड़े बुजुर्ग उसे तुरंत ठोकर सुधार देते थे।
ये ज्ञान प्राप्त कर रहे थे वो कोई आम श्रोता नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा थे जिसका मुख्य काम ही जानकारी को सुरक्षित रखना था।
एकदम सही समझे आप। प्राचीन शिक्षा प्रणाली, विशेषकर मध्य पूर्व और यूनान की गुरु शिष्य परंपरा में छात्रों का मुख्य काम ही जानकारी को हूबहू याद रखना होता था।
और ये छात्र किस उम्र के होते थे?
छात्र आमतौर पर किशोरावस्था में ही गुरु के पास आ जाते थे, जब दिमाग सबसे तेजी से चीजों को ग्रहण करता है।
हाँ, उस उम्र में ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है।
बिल्कुल। एक बहुत ही कड़े अनुशासन का उदाहरण पाइथागोरस के शिष्यों का है। पाइथागोरियन स्कूल का एक सख्त नियम था कि कोई भी शिष्य सुबह तब तक अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता जब तक कि वो पिछले दिन सीखी गई सारी दार्शनिक और गणितीय बातों को पूरी तरह से मानसिक रूप से दोहराना ले।
अरे बाप रे, अगर आज के स्कूलों और कॉलेजों में ये नियम लागू हो जाए तो मुझे यकीन है कि आधे से ज्यादा छात्र तो कभी बिस्तर से ही नहीं उठ पाएंगे।
हाँ, ये सच है। साक्षर समाजों और मौखिक समाजों में यही सबसे बड़ा अंतर है।
मतलब आज हम बहुत आलसी हो गए।
हाँ, आज हम कोई किताब पढ़ते हैं, उसका केवल सार समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन प्राचीन यहूदी शिक्षा प्रणाली में जहाँ गुरुओं को रब्बी कहा जाता था, उनका तरीका अलग था।
वो कैसे सिखाते थे?
वे अपने शिष्यों को ऐसी विशेष लयबद्ध भाषा, कविताओं और पैटर्न्स में सिखाते थे जिसे रटना आसान हो। एक रब्बी ने तो अपने एक सबसे होनहार शिष्य की तारीफ करते हुए उसे एक ऐसा पानी का टैंक कहा था जिससे एक बूंद भी पानी नहीं रिसता।
पानी का टैंक, मतलब वो कुछ भूलता नहीं था।
बिल्कुल। कहने का तात्पर्य ये था कि गुरु के मुख से निकले ज्ञान की एक भी बूंद शिष्य के दिमाग से बाहर नहीं गिरती थी और वे सिर्फ शब्द नहीं याद करते थे बल्कि गुरु के चलने का तरीका, उनके फैसले लेने का ढंग, सब कुछ याद रखा जाता था।
क्या किसी भी तरह के नोट्स लेने की कोई परंपरा नहीं थी?
नहीं नहीं, नोट्स लेने की परंपरा बिल्कुल मौजूद थी। क्विंटिलियन नाम के एक बहुत ही मशहूर रोमन प्रोफेसर थे।
अच्छा।
उनके छात्रों ने उनके लेक्चर के इतने सटीक और विस्तृत नोट्स लिए कि बाद में उन छात्रों ने मिलकर उन नोट्स को क्विंटिलियन के नाम से ही एक पूरी किताब के रूप में प्रकाशित कर दिया,
बिना उनको बताए।
हाँ, और जब क्विंटिलियन को ये पता चला तो उन्हें कहना पड़ा कि भाई छापने से पहले कम से कम मुझे दिखा तो देते, मैं उसमें कुछ ग्रामर और स्टाइल की गलतियां ही सुधार देता।
मतलब नोट्स इतने अच्छे थे कि सीधे किताब बन गई।
बिल्कुल, और अगर हम इस संदर्भ को एक्ट्स और गॉस्पेल से जोड़े तो जीसस के एक प्रमुख शिष्य थे मैथ्यू।
हाँ, मैथ्यू
वो पेशे से एक टैक्स कलेक्टर थे। टैक्स कलेक्टर होने के नाते उनके पास पेशेवर तौर पर बही खाते बनाने, तेज गणना करने और बारीक डिटेल्स के नोट्स लेने का पूरा कौशल और सामग्री मौजूद थी।
तो अगर हम इसे आज की तकनीक की भाषा में समझें तो ये शिष्य असल में एक क्लाउड बैकअप की तरह काम कर रहे थे।
क्लाउड बैकअप, हाँ कह सकते हैं।
मतलब अगर किसी वजह से एक डिवाइस यानी एक शिष्य उपलब्ध नहीं है या उसे कुछ हो जाता है तो बाकी शिष्यों के पास वो सारा ऐतिहासिक डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता था।
ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। इसे समाज शास्त्र में सामूहिक याददाश्त या कलेक्टिव मेमोरी कहा जाता है।
कलेक्टिव मेमोरी?
हाँ, इतिहास किसी एक व्यक्ति के कमजोर हो सकने वाले दिमाग पर निर्भर नहीं था, बल्कि ये पूरे समुदाय के बीच सुरक्षित एक बैकअप सिस्टम था।
चलिए तो अब हम इस पूरी नींव के साथ ल्यूक की तरफ मुड़ते हैं।
बिल्कुल,
यह तो स्पष्ट हो गया कि पहली सदी के शिष्यों के पास घटनाओं को याद रखने की बेहतरीन क्षमता थी। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि ल्यूक तो शुरुआत से उन घटनाओं का हिस्सा थे ही नहीं।
हाँ, वो मूल 12 शिष्यों में नहीं थे।
तो फिर उन्होंने एक्ट्स नाम का ये विशाल ऐतिहासिक दस्तावेज कैसे संकलित किया?
यहीं पर ल्यूक का काम एक पहली सदी के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी खोजी पत्रकार जैसा हो जाता है।
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट?
हाँ, ल्यूक ने अपनी किताब, जो कि विद्वानों के अनुसार लगभग 62 से 90 ईस्वी के बीच, संभवतः 70 के दशक में लिखी गई, महज अफवाहों या कल्पनाओं के आधार पर नहीं लिखी थी।
तो उन्होंने रिसर्च की थी।
उन्होंने एक बाकायदा शोधकर्ता की तरह काम किया। उन्होंने उन लोगों को खोजा, उनसे सीधे साक्षात्कार किए जो उन घटनाओं के चश्मदीद गवाह थे, जैसे पीटर, जेम्स और शुरुआती कलीसिया के अन्य सदस्य।
और ये बात सिर्फ एक अनुमान नहीं है, बल्कि एक्ट्स के भीतर ही इसके प्रमाण मिलते हैं। मैंने पढ़ा है कि जो लोग किताब को ध्यान से पढ़ते हैं वे अक्सर अध्याय 16 के बाद आने वाले उन हम वाले हिस्सों का जिक्र करते हैं।
एकदम सही पकड़े आप। एक्ट्स के अध्याय 16 से 28 के बीच कथावाचक अचानक थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी हम या हमने में शिफ्ट हो जाता है।
मतलब वे से हम हो जाता है।
हाँ, और इतिहासकार मानते हैं कि यह कोई साहित्यिक शायरी का प्रयोग नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट ऐतिहासिक संकेत है कि उन समुद्री यात्राओं और मिशनों में ल्यूक खुद पॉल के साथ व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे।
अच्छा, तो वो उनके साथ सफर कर रहे थे।
बिल्कुल, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब पॉल रोमन हिरासत में सीजेरिया में कैद थे। वहां ल्यूक ने पॉल के साथ लगभग 2 साल बिताए थे।
सीजेरिया तो उस समय एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र था ना?
हाँ, बहुत बड़ा केंद्र था।
और 2 साल का समय किसी भी लेखक या पत्रकार के लिए प्राथमिक स्रोतों से डेटा एकत्र करने के लिए बहुत बड़ा समय होता है।
बिल्कुल, उन 2 सालों ने ल्यूक को एक अभूतपूर्व अवसर दिया।
किस तरह का अवसर?
यरूशलेम और आसपास के इलाकों में रहने वाले पुराने शिष्यों, जेम्स जैसे करीबियों और अन्य चश्मदीद गवाहों से मिलने का अवसर, उनसे लंबी पूछताछ करने का और विभिन्न लोगों द्वारा सुनाई गई कहानियों को क्रॉस चेक करने का उनके पास पर्याप्त समय था।
मतलब उन्होंने प्रॉपर जर्नलिज्म किया।
हाँ, ल्यूक एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे और उन्होंने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया।
लेकिन यहाँ एक भाषाई और सांस्कृतिक पेच फंसता है।
कैसा पेच?
देखिए, जो घटनाएं हुई वे मूल रूप से अरामी भाषा बोलने वाले लोगों के बीच हुई। जीसस और उनके शिष्य अरामी बोलते थे।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन ल्यूक ने जो इतिहास लिखा और जो नए नियम के बाकी दस्तावेज हैं वे सब ग्रीक भाषा में लिखे गए। जब कोई सांस्कृतिक मुहावरा एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित होता है तो अक्सर उसका मूल अर्थ खो जाता है, जिसे हम लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कहते हैं।
सही बात है।
तो क्या ल्यूक के इतिहास लेखन में अनुवाद की वजह से जानकारी प्रभावित नहीं हुई?
ये शंका बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहली शताब्दी के रोमन साम्राज्य के उस बहुभाषी समाज को समझना होगा।
मतलब लोग बाइलिंगुअल थे।
हाँ, गैलीलियो और यरूशलेम में रहने वाले लोग अक्सर एक ही समय में 2 या 3 भाषाएं बोलते थे, जैसे अरामी, ग्रीक और कभी कभी लैटिन। डॉक्टर कीनर इसे समझाने के लिए अपनी पत्नी का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण देते हैं।
अच्छा, उनकी पत्नी का?
हाँ, उनकी पत्नी अफ्रीका से हैं और 5 अलग अलग भाषाएं बोलती हैं।
डॉक्टर कीनर बताते हैं कि वे अक्सर अपनी पत्नी को फोन पर एक ही समय में तीन अलग अलग भाषाओं में बिना रुके बात करते हुए देखते हैं।
अरे वाह, ये तो कमाल है।
ऐसे दूसरी भाषा में सहजता से शिफ्ट कर लेते हैं।
बात तो सही है, लेकिन क्या प्राचीन ग्रंथों में इस भाषाई सटीकता का कोई ठोस प्रमाण मिलता है? मतलब ये कैसे पता चले कि लूक ने ग्रीक पाठकों को खुश करने के लिए मूल बातों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की?
इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ग्रीक में अनुवाद करने के बावजूद इन लेखकों ने मूल अरामी भाषा की लय और सांस्कृतिक मुहावरों को जानबूझकर सहेज कर रखा, भले ही वे ग्रीक में कितने ही अजीब क्यों न लगें।
अच्छा, कोई उदाहरण है इसका?
बिल्कुल, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जीसस अक्सर खुद के लिए एक विशेष उपाधि सन ऑफ मैन का उपयोग करते थे। मूल अरामी में ये शब्द बारानीश है।
बारानीश?
हाँ, जिसका यहूदी संस्कृति में एक बहुत ही गहरा अर्थ है। लेकिन जब इस अरामी मुहावरे का सीधे ग्रीक में शाब्दिक अनुवाद किया गया तो यह एक आम ग्रीक पाठक के लिए व्याकरण और शैली के लिहाज से बहुत ही अटपटा और बेतुका लगता था।
मतलब वो ग्रामेटिकली सही नहीं बैठ रहा था।
बिल्कुल, अगर ल्यूक का मकसद सिर्फ एक खूबसूरत ग्रीक साहित्य रचना होता तो वे इसे किसी बेहतर ग्रीक मुहावरे से बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने इसे वैसा ही छोड़ दिया।
हाँ, उन्होंने अनुवाद को ग्रीक मुहावरों के हिसाब से बदलने के बजाय उस सटीक आरामी लय को वैसे ही रखा। ये दिखाता है कि उनके लिए साहित्य की सुंदरता से ज्यादा उस जानकारी की ऐतिहासिक और मौखिक सटीकता महत्वपूर्ण थी।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब उन्होंने तथ्यों की कीमत पर भाषा को चमकाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की।
एकदम सही।
अस्कार किसी भी प्राचीन दस्तावेज पर तब तक भरोसा नहीं करते जब तक कि उसकी पुष्टि बाहरी ऐतिहासिक या भौगोलिक सबूतों से न हो जाए।
हाँ, एक्सटर्नल एविडेंस तो चाहिए।
तो क्या ल्यूक की किताब एक्ट्स बाहरी कसौटियों पर खरी उतरती है?
यहीं पर लुक की प्रतिष्ठा एक महान प्राचीन इतिहासकार के रूप में सबसे ज्यादा चमकती है। देखिए, रोमन साम्राज्य एक बहुत ही विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी।
डिसेंट्रलाइज्ड।
हाँ, हर प्रांत हर शहर के रोम के साथ अपने अलग अलग संधियां और नियम थे। इसी वजह से अलग अलग शहरों में स्थानीय अधिकारियों के पदनाम बिल्कुल अलग होते थे।
मतलब टाइटल्स अलग होते थे?
बिल्कुल। अगर कोई उपन्यासकार या कोई ऐसा व्यक्ति जो दशकों बाद किसी दूसरे देश में बैठकर झूठी कहानी गढ़ रहा हो, वो निश्चित रूप से इन छोटी छोटी राजनीतिक डिटेल्स में भारी गलती कर बैठेगा।
हाँ, क्योंकि उस समय इंटरनेट, गूगल मैप्स या कोई विकिपीडिया तो था नहीं जहाँ से वो शहर के अधिकारियों के नाम चेक कर सके।
बिल्कुल सही।
ये बात तर्कसंगत लगती है। एक झूठा लेखक शायद पूरे साम्राज्य के लिए गवर्नर या मेयर जैसा कोई एक कॉमन शब्द इस्तेमाल कर लेगा। तो ल्यूक ने यहाँ क्या अलग किया?
ल्यूक की भौगोलिक और राजनीतिक सटीकता अविश्वसनीय है। उदाहरण के लिए, ल्यूक ने थेसालोनिका शहर के अधिकारियों का जिक्र करते हुए उन्हें पॉलिटाक्स कहा।
पॉलिटाक्स।
और जब उन्होंने इफिसुस शहर के मुख्य अधिकारी का जिक्र किया तो उसे ग्रामेटस कहा।
हाँ।
सदियों तक कुछ आलोचकों को लगता था कि ल्यूक ने ये नाम खुद ही बना लिए हैं।
अच्छा, लोगों को डाउट था।
हाँ, लेकिन आधुनिक युग में जब पुरातत्वविदों ने उन विशिष्ट शहरों में खुदाई की और प्राचीन शिलालेख पढ़े तो वे हैरान रह गए।
वो नाम मिल गए।
जी हाँ, खुदाई में निकले पत्थरों पर ठीक वही पदनाम उकेरे हुए थे जो ल्यूक ने इस्तेमाल किए थे।
अरे वाह, ये वाकई दिलचस्प है कि एक प्राचीन लेखक बिना किसी डेटाबेस के इतनी बारीक जानकारी सही दे रहा है।
और ये सिर्फ पदनामों तक सीमित नहीं है। इफेसुस शहर में आर्टेमिस देवी का एक बहुत बड़ा मंदिर था।
आर्टेमिस देवी? हाँ, मैंने सुना है।
वहाँ के स्थानीय लोग देवी के लिए एक बहुत ही खास स्थानीय शब्द हे थियायास का इस्तेमाल करते थे, जो आम ग्रीक भाषा से बिल्कुल अलग था। ल्यूक ने अपनी किताब में बिल्कुल इसी दुर्लभ स्थानीय शब्द का जिक्र किया है।
क्या बात है।
इसके अलावा तत्कालीन राजनीतिक समीकरणों को देखिए। रोमन गवर्नर फेलिक्स का सत्ता में होना, उसकी पत्नी ड्रूसिला का एक यहूदी राजकुमारी होना और एक विशेष समय पर राजा एग्रिप्पा द्वितीय के साथ बर्निस की मौजूदगी,
ये सब मैच करता है।
बिल्कुल, ये पूरा राजनीतिक ताना बाना रोम के भारी इतिहास के पन्नों से एकदम सटीक बैठता है।
लेकिन जो लोग इतिहास पर संदेह करते हैं वो यहाँ एक तर्क दे सकते हैं।
क्या तर्क?
वे कह सकते हैं कि शायद ल्यूक ने कुछ किताबें पढ़ी हों, या शायद ये सब सिर्फ एक अच्छा तुक्का हो। मतलब लकी गैस, एक दो चीजें तो इत्तेफाक से भी सही हो सकती है ना।
इत्तेफाक एक या दो बार हो सकता है, लेकिन दर्जनों बार नहीं।
वो कैसे?
जर्मन विद्वान एडोल्फ वॉन हेरनेक का काम यहाँ बहुत प्रासंगिक है। हेरनेक कोई रूढ़िवादी इंसान नहीं थे, वे एक बहुत ही उदारवादी विद्वान थे जो चमत्कारों पर भी विश्वास नहीं करते थे।
अच्छा, लिबरल स्कॉलर थे।
हाँ, लेकिन जब उन्होंने पॉल के द्वारा लिखे गए पत्रों और ल्यूक की किताब एक्ट्स का गहराई से अध्ययन किया
तो उन्हें 39 ऐसे विशिष्ट स्थान, घटनाएं और बारीक विवरण मिले जहां पॉल के व्यक्तिगत पत्र और ल्यूक की कहानी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एक दूसरे की पुष्टि करते हैं।
39 बार?
हाँ, 39 बार तुक्का लगाना सांख्यिकी रूप से तो असंभव है।
और शायद यही कारण है कि इतिहासकार ल्यूक के यात्रा विवरणों को इतना प्रामाणिक मानते हैं।
बिल्कुल, आप समुद्री यात्राओं का विवरण ही देख लीजिए। एक्स के अध्याय 27 में ल्यूक ने रोम की एक खतरनाक समुद्री यात्रा और उसमें आए एक भयंकर तूफान का जिक्र किया है।
हाँ, वो जहाज के डूबने वाली कहानी।
जी, ल्यूक ने यूराक्लिडॉन नामक विशेष हवा की दिशा, सर्टिस के रेत के टीलों का डर और तूफान से बचने के लिए नाविकों द्वारा जहाज के नीचे रस्सियां बांधने की जिस विशेष तकनीक का वर्णन किया है,
उसे अंडरगर्डिंग कहते हैं ना?
हाँ, वो इतना बारीक और सटीक नौकायन विवरण है कि 19वीं सदी के अनुभवी नाविकों और शोधकर्ताओं ने भी ये स्वीकार किया कि ऐसा विवरण कोई भी व्यक्ति महज कल्पना से या दूर बैठकर नहीं लिख सकता।
मतलब बिना खुद अनुभव किए ये नहीं लिखा जा सकता।
बिल्कुल, इसे सिर्फ वही इंसान लिख सकता है जिसने खुद उस जहाज पर मौत का सामना किया हो।
ये सब तो लूक्स की सटीकता के बहुत ही ठोस सबूत है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और बड़ी चुनौती आ रही है जो अक्सर प्राचीन इतिहास पढ़ते समय आती है।
बताइए, क्या चुनौती है?
अगर लोग भौगोलिक और राजनीतिक तथ्यों में इतने सटीक हैं, तो एक्स की किताब में दिए गए उन लंबे भाषणों का क्या?
अच्छा, आप स्पीचेस की बात कर रही हैं?
हाँ, किताब का लगभग 1/4 हिस्सा भाषणों से भरा है। प्राचीन काल के इतिहासकारों की एक आम आदत थी कि जब उन्हें नहीं पता होता था कि किसी ऐतिहासिक व्यक्ति ने ठीक ठीक क्या कहा है, तो वे स्थिति के हिसाब से खुद ही कोई शानदार भाषण गढ़ देते थे।
हाँ, ये एक आम प्रैक्टिस थी।
शायद इसके लिए कोई ग्रीक शब्द भी है, प्रोसोपोपिया या ऐसा ही कुछ। क्या ल्यूक भी यही कर रहे थे?
आपने बहुत ही सही तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रोसोपोपिया। प्राचीन ग्रीक और रोमन इतिहासकार इस तकनीक का जमकर इस्तेमाल करते थे।
तो इसमें होता क्या था?
इसका मतलब था कि इतिहासकार उस ऐतिहासिक व्यक्ति के चरित्र और उस समय के हालात को ध्यान में रखकर अपनी कल्पना से एक ऐसा भाषण तैयार कर देता था जो सुनने में बहुत भव्य लगे।
मतलब एक बनावटी भाषण?
हाँ, इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण यहूदी इतिहासकार जोसेफस की किताब में मिलता है। जोसेफस ने मसाड़ा के किले की घेराबंदी का वर्णन किया है जहां रोमनों से घिरने के बाद यहूदी विद्रोहियों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी।
हाँ, मसाड़ा की घेराबंदी बहुत मशहूर है।
जोसेफस ने अपनी किताब में विद्रोहियों के नेता एलियाजार का एक बहुत ही लंबा, जटिल और दार्शनिक भाषण लिखा है जो प्लेटो के दर्शन से भारी रूप से प्रेरित लगता है।
एक मिनट, लेकिन मसाड़ा में तो सभी विद्रोही मारे गए थे ना?
बिल्कुल,
केवल 2 महिलाएं और कुछ बच्चे एक पानी की गुफा में छुपकर जिंदा बचे थे। तो जोसेफस को वो पूरा दार्शनिक भाषण किसने सुना? क्या उन डरी हुई महिलाओं ने उस खौफनाक माहौल में दर्शन शास्त्र का लंबा भाषण याद कर लिया था? ये तो असंभव लगता है।
यहीं पर सबसे बड़ा पेच है। ये पूरी तरह असंभव है। जोसेफस वहां स्पष्ट रूप से प्रोसोपोपिया का उपयोग कर रहे थे।
मतलब वो झूठ लिख रहे थे?
उस समय के इतिहास लेखन में इसे अनैतिक नहीं माना जाता था। ये एक स्थापित परंपरा थी। वे अपने रोमन पाठकों को अपना साहित्यिक कौशल दिखा रहे थे और अपनी तरफ से एक भव्य भाषण गढ़ रहे थे।
तो क्या इसका अर्थ यह है कि लूक ने भी एक्ट्स में पीटर या पॉल के जो भाषण लिखे हैं, वे उनके खुद के गढ़े हुए हैं?
यहीं पर लूक अपने समकालीन इतिहासकारों से बिल्कुल अलग खड़े नजर आते हैं। अगर आप एक्ट्स में दिए गए भाषणों का विश्लेषण करें तो वे जोसेफस के भाषणों की तरह लंबे और दार्शनिक नहीं है।
तो वो कैसे है?
वे बहुत छोटे हैं। उदाहरण के लिए अध्याय 2 में पीटर का जो ऐतिहासिक भाषण है, अगर आप उसे जोर से पढ़ें तो उसमें मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगते हैं।
बस 2-3 मिनट?
हाँ, जबकि वास्तविकता में एक इतनी बड़ी भीड़ के सामने दिया गया भाषण काफी लंबा रहा होगा। लूक खुद ये बात छिपाते नहीं हैं। वे स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि और भी कई शब्दों के साथ उन्होंने आग्रह किया।
अच्छा, मतलब वो बता रहे हैं कि और भी बातें हुई थी।
बिल्कुल, इसका सीधा अर्थ यह है कि वे भाषण शब्द दर शब्द ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, बल्कि वे भाषणों का सारांश है, स्पीच समरीज।
इसे अगर मैं आज के कॉर्पोरेट माहौल से जोड़ के देखूं तो ये किसी लंबी मीटिंग के बाद तैयार की गई एग्जीक्यूटिव समरी की तरह है।
एग्जीक्यूटिव समरी?
हाँ बिल्कुल,
जहां आप 2 घंटे की मीटिंग का पूरा ट्रांसक्रिप्ट नहीं लिखते बल्कि सिर्फ मुख्य बिंदु, तर्क और निष्कर्ष लिख लेते हैं ताकि असली संदेश सुरक्षित रहे।
ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। ल्यूक का मकसद अपनी भाषा का दिखावा करना या कोई दार्शनिक जाल बुनना नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य उस मूल बात को, उस सार को सटीकता और ईमानदारी से पेश करना था जो चश्मदीदों को याद था।
मतलब उन्होंने ऑनेस्टी दिखाई। हाँ, प्राचीन इतिहास लेखन और आधुनिक इतिहास लेखन के मानकों में यही एक बड़ा अंतर है। आज हम चाहते हैं कि हर शब्द रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन प्राचीन काल में घटना के मूल संदेश और उसके प्रभाव को बिना किसी मिलावट के पेश करना ही सबसे बड़ी प्रामाणिकता मानी जाती थी।
और लोक के लेखन में हमें यही ईमानदारी देखने को मिलती है।
तो अगर हम अपनी इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में इतिहास सहेजने का तरीका हमारे आज के डिजिटल तरीके से भले ही बिल्कुल अलग था, लेकिन वो किसी भी मायने में कमजोर या अविश्वसनीय नहीं था।
बिल्कुल नहीं।
कड़े मानसिक अनुशासन, पीढ़ियों से चली आ रही बेहतरीन स्मृति सहायक तकनीकों और लूक जैसे व्यक्ति की गहरी खोजी पत्रकारिता ने मिलकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो बाहरी इतिहास, स्थानीय भूगोल और जटिल राजनीतिक संरचना की हर मुश्किल कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरता है।
और यही इस पूरे शोध का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध हैं, वे अंधविश्वासी लोगों द्वारा रची गई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं।
जी।
वे एक ऐसी संस्कृति की उपज हैं जो ज्ञान और तथ्यों को संरक्षित करने को अपना परम कर्तव्य मानती थी।
ये पूरी चर्चा हमारे आज के जीवन को लेकर वाकई कई सवाल खड़े कर देती है। हमने इस चर्चा की शुरुआत में बात की थी कि कैसे आज हम सब कुछ क्लाउड पर सेव करते हैं और खुद कुछ भी याद नहीं रखना चाहते,
जबकि दूसरी तरफ हमारे पास वे प्राचीन लोग थे जिन्होंने महाकाव्यों की 48 किताबें, हजारों नाम और पीढ़ियों का जटिल इतिहास सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के बल पर सहीज कर रखा था।
ये हमारे आज के समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। यदि प्राचीन काल के इंसानों के पास जानकारी को याद रखने, उसे बिना किसी मिलावट के पीढ़ियों तक पहुंचाने और उसका सटीक विश्लेषण करने की इतनी असीम मानसिक क्षमता थी,
हाँ,
तो आज अपने स्मार्टफोन, सर्च इंजन और हर वक्त उपलब्ध इंटरनेट पर पूरी तरह से निर्भर होकर क्या हमने अनजाने में अपने ही दिमाग की इस अद्भुत सुपर पावर को हमेशा के लिए खो दिया है? ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास से निकलकर हमारे भविष्य पर बहुत गहरा सवाल उठाता है।